पेज नंबर 116, आंगन का पंछी, विद्या निवास मिश्र। गांव में कहा जाता है, जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती, वह घर निर्वंश हो जाता है। एक तरह से घर के आंगन गौरैयों का ढीठ घर के आंगन गौरैयों का ढीठ होकर चहचहाना, दाने चुगकर मुंडेरी पर बैठना, हर सांझ हर सुबह हर कहीं तिनके बिखेरना, और घूम घूम कर फिर रात में घर ही में बस जाना। अपनी बढ़ती चाहने वाले गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी मीठी शरारत और निर्भय उच्छलता का प्रतीक है। फूल तो बहुत से होंगे, एक से एक चमकीले, एक से एक खुशबू वाले, एक से एक कटीले, पर बेला, गुलाब, जूही, चमेली, कुमुद, कमल बहुत कम आंगनों में मिलते हैं, और अकिंचन से अकिंचन आंगन में भी तुलसी की बेदी जरूर मिलती है, और उस बेदी पर तुलसी की मंजरी जरूर खिलती है। जिस तरह गौरैये में कोई रूप रंग की विशेषता नहीं, कंठ में कोई विशेष प्रकार की विह्वलता नहीं, उड़ान भरने की भी कोई विशेष क्षमता नहीं, महज आंगन में फुदकने का उछा है, उसी तरह तुलसी के पौधे में न तो सघन छांह की शीतलता है, न गंध का जादू है, न रूप का श्रृंगार है, केवल आंगन का दुख दर्द बांटने की मन में बड़ी उत्कंठा है। तुलसी की पूजा के लिए तो खैर शास्त्रीय आधार हैं, पर गौरैया के लिए मात्र जन विश्वास का यह उपहार भर है कि वह पंछियों में ब्राह्मण है, इसलिए इतनी ढीठ, इतनी निर्भय, इतनी आत्मी और इतनी मंगलास्पद है। जो लोग पंछियों चिड़ियों का शिकार करते भी हैं, वे गौरैया को नहीं मारते, गौरैया मारना पाप समझते हैं। मैंने अपनी ससुराल के बड़े आंगन में देखा है कि वहाँ गौरैयों के लिए धानों की मोजर आंगन के चारों ओर ओरियों के नीचे बराबर लटकाई रहती है, और धान की मंजरियों की यह पंक्ति रीति नहीं, शायद इसलिए कि गौरैयों में भी इनके प्रति मोह हो। बहरहाल उस बड़े आंगन में बराबर धान सुखाया जाता है, और उस पर बराबर गौरैयों के दल आते रहते हैं। जरा सी देर में जरा से इशारे से ये दल तितर बितर हो जाते हैं, पर जरा सी आंख ओझल होते ही फिर वहीं जम जाते हैं। घर में रहते हुए भी स्वच्छंद रहते हैं। वह आंगन बड़ा तो नहीं है पर भरा नहीं है। वह आंगन बड़ा तो है पर भरा नहीं है। साल में केवल कभी कभी वह आंगन मेहमान की तरह आए हुए बच्चों से भरता है, पर आंगन उससे भरने वाला है या उनसे भर चुका है, मानो इसी आशा और इसी स्मृति में इन गौरैयों को ऐसा प्यार दिया जाता है। एक दिन मैं वहीं था जबकि किसी अखबार में पढ़ा कि चीन में एक नया पुरुषार्थ जागा है। वहाँ की उत्साही सरकार ने गौरैयों को खेती का शत्रु मानकर उनके खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू किया है। खैर, चीन में अभियान हो और वह सामूहिक ना हो तो वह अनहोनी बात होगी, पर जब यह पढ़ा कि कुछ लाखों की तादाद में वहाँ के तरुण सैनिक बंदूक लेकर गौरैयों के शिकार के लिए निकल पड़े हैं, तो हंसी भी आई और रोना भी आया। हंसी इसलिए कि गौरैयों का वीरता पर अपव्यय हो रहा है, और रोना इसलिए कि जिस तरह और जिस पैमाने पर गौरैयों के वध की योजना बनाई गई है वह कितना मानवीय है। उसी अखबार में पढ़ा कि बंदूक दाग दाग कर झुंड के झुंड इन गौरैयों को खदेड़ते हैं, और खदेड़ते ही रहते हैं ताकि ये कहीं बैठने को ठौर ना पा सकें और अंत में बेदम होकर जमीन पर आ गिरें। ऐसे मासूम और मनुष्य के प्रति सहज विश्वास रखने वाले पंछी को इस प्रकार निर्मूल करने की योजना सचमुच उन्माद से प्रेरित नहीं तो क्या है? मैंने भी बुद्धिवादी कविताएं पढ़ी हैं जिनमें ताजमहल के निर्माण पर शोक प्रकट किया गया है, जबकि मनुष्य का शव कफन के लिए भी तरस रहा है। जहां चींटियों के लिए आटा छींटने और मछलियों के लिए आटे की गोली फेंकने पर व्यंग कसा गया है, जबकि मनुष्य भूखों मर रहे हैं। जहां की गुलाब की क्यारियों की पर तरस खाया गया है क्योंकि गेहूं की देश में कमी है, और जहाँ की कला की उपासना को ऐसा समझा गया है जबकि मनुष्य अभाव से ग्रस्त है। मैंने इस अभियान की सफाई के लिए उन कविताओं को एक एक करके याद किया, फिर मुझे लगा यह तो अभाव की पूर्ति की योजना नहीं है, यह तो पूंजीवाद को समाप्त करने का भी आयोजन नहीं है, और यह मनुष्य की सत्ता सृष्टि में सर्वोपरि मानने का कोई नया तरीका भी नहीं हो सकता है। गौरैया दाना चुगती है, पर शायद जिस मात्रा में दाना चुगती है उससे कहीं अधिक लाभ वह खेत का इस प्रकार करती है कि अनाज में लगने वाले कीड़ों को वह साफ करती रहती। थोड़ी देर के लिए ही माना कि वह दाना नहीं देती, केवल लेती भर है, तो भी क्या इस प्रकार समूची सृष्टि की समरसता के साथ खिलवाड़ करना उचित है? मनुष्य को इस प्रकार लाभ की आशा से नहीं, केवल अपनी प्रतिहिंसा की भावना से निरीह और अपने ही साथ अपने बच्चों की तरह निर्भय विचरने वालों को इस प्रकार थका थका के सता सता के मारना कोई न्याय है? यह कौन सा पंचशील का उदाहरण है? शायद जितना अनाज गौरैयों ने खाया ना होगा, उससे कहीं अधिक दाम की गोलियां उन्हें सताने में बर्बाद हो गई होंगी। माना कि मनुष्य को अपने ही समान बुद्धि बल वाले दूसरे देशवासी मनुष्य के साथ प्रतिहिंसा करने का सहज अधिकार थोड़ी देर के लिए हो भी, और वह अपने निर्णय से अधिक अपने तुल्य बल भाई के विध्वंस पर खर्च करने के लिए पागल हो जाए तो अनुचित नहीं? परंतु मनुष्य जिस उत्फुल्लता के लिए, जिस मुक्ति के लिए, जिस राहत के लिए इस गलाकाट व्यापार में लगा हुआ है, उसी उत्फुल्लता, मुक्ति और राहत के इन जीते जागते प्रतिबिंबों को इस प्रकार नष्ट करने पर उतारू हो जाए, यह किस प्रकार समझ में आए? हमारे देश में ऐसे सयाने लोग हैं जो अपने नाच की अयोग्यता आंगन के टेढ़ेपन के ऊपर थोपने के लिए ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं कि अन्न इसलिए कम पैदा हो रहा है कि चिड़ियाँ उन्हें खा जाती हैं, बंदर उन्हें तहस नहस कर जाते हैं, चूहे उन्हें कुतर जाते हैं और धूप उन्हें सुखा जाती है। इसलिए पहले इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए ताकि खेती अपने आप बिना मनुष्य के परिश्रम के अधिक उपजाऊ हो जाए। पर चीन के ये सयाने तो इस नियंत्रण मात्र से संतुष्ट नहीं है, वे निर्मूलन में विश्वास करते हैं। सृष्टि के संतुलन बने बिगड़े, यहाँ तक कि मनुष्य किस लिए यह कर रहा है वह भी उसे मिले न मिले, पहले वह अपने दिल का गुबार तो उतार लें। और चीन प्रज्ञा पारमिता का देश है, बुद्ध की मैत्री का देश है, नए युग में मनुष्य के उद्धार का दावा करने वाला देश है, और है सह अस्तित्व, परस्पर संयोग और प्रेम की कसम खाने वाला देश। लगता है चीन में कोई घर न रह गया हो, कोई आंगन न रह गया हो, किसी घर और किसी आंगन में कोई मोहब्बत न रह गई हो, किसी घर और किसी आंगन में मुक्त हंसी न रह गई हो, उसमें बच्चे न रह गए हों, और अगर रह भी गए हों तो किसी बच्चे के चेहरे पर विश्वास की चमक न रह गई हो। तभी तो इन गौरैयों के साथ नादिरशाही बदला लिया जा रहा है। उनका अपराध केवल यही है कि वे निःशंक और निःशंक होकर वे हर घर में आनंद के दाने बिखेर जाती हैं। जितने दाने लेती हैं उन्हें चौगुना करके आनंद में परिवर्तित कर हर आंगन में मुक्त हस्त होकर लुटा जाती हैं। उनका अपराध है कि वे गमगीन नहीं हैं, उनका अपराध है कि वे कबूतर की तरह दूर तक गले में पाती बांध कर पहुंचा नहीं सकती, उनका अपराध है कि तोतों की तरह हर एक स्तुति और हर एक गाली दोहरा नहीं सकती, उनका अपराध है कि वे अपने पंखों में सुर्खी नहीं लगा सकती, उनका अपराध है कि उनके पास वह लाल कलंगी नहीं है जिसको सिर में लगाकर कूड़े की ढेरी पर खड़े होकर रात के धुंधलके में बाग दे सकें कि अरुणोदय होने वाला है, उनका अपराध है कि वे सुबह की साथी नहीं हैं, दोपहर की साथी हैं, वे गगन की पंछी नहीं, आंगन की पंछी हैं।